नमस्कार, आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत इसके कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
हाँ जी,
ये बस एक जीवन कहानी नहीं है, बल्कि जैसा वो खुद कहते हैं, ये अध्यात्म विज्ञान के असली रूप को और उसके जो निश्चित नतीजे होते हैं उन्हें समझने की एक कोशिश है।
बिल्कुल, और लेखक ये भी साफ करते हैं कि अध्यात्म का जो सही रूप है उसे न जानने के कारण ही लोग अक्सर मतलब भटक जाते हैं।
हाँ, श्रद्धा खो बैठते हैं।
हाँ, और फिर श्रद्धा कम हो जाती है, उसे दिखावा मानने लगते हैं।
या
तो ये किताब इसी भटकाव को दूर करने का और अध्यात्म का जो प्रैक्टिकल साइड है जिसे जीवन में उतारा जा सके उसे सामने लाने का एक प्रयास है।
अच्छा, तो चलिए इस सफर को थोड़ा समझते हैं। ये शुरू कैसे हुआ? सिर्फ 15 साल की उम्र में वसंत पंचमी का दिन था और पूजा करते हुए अचानक उन्हें एक तेज रोशनी दिखी और उसमें एक योगी का सूक्ष्म शरीर। यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया।
बिल्कुल, और यह अनुभव काफी चौंकाने वाला था उनके लिए। मन में शक भी आया, जाहिर है, कि कहीं ये कोई वहम तो नहीं या कोई अशुभ संकेत तो नहीं।
हाँ, डर भी लगा होगा,
पर असल में यही उन्हें अपने गाइड, अपने गुरु का पहला संकेत मिला। गुरु ने फिर उन्हें जीवन का पूरा ढांचा समझाया।
पूरा ढांचा मतलब?
मतलब आगे क्या करना है, जैसे 24 साल का गायत्री महापुरुष चरण, यानी गायत्री मंत्र के करोड़ों जाप की एक बहुत गहन साधना।
24 साल?
हाँ, और एक अखंड दीपक जलाए रखना जो साधना काल में लगातार जलता रहे, एक संकल्प की तरह। और साथ ही समय समय पर हिमालय जाने के निर्देश भी मिले।
यहाँ ये गुरु वाली बात बड़ी दिलचस्प है। आचार्य जी कहते हैं कि गुरु मिलने में देर नहीं लगती।
सही बात है,
शिष्य को मतलब खुद को तैयार करने में, वो पात्रता लाने में समय लगता है।
हाँ बिल्कुल, अगर सच्ची श्रद्धा हो तो जैसे एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से सीख लिया।
हाँ बिल्कुल,
रूसुफ रास्तावीद खत्ते, वो उस पर चलने की जो अंदरूनी ताकत है वो सामर्थ्य भी देते हैं।
लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं रहा होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत थी। परिवार का, समाज का जबरदस्त विरोध हुआ।
अच्छा।
हाँ, सामान्य जो गृहस्थ जीवन होता है वो जीने का भारी दबाव था, यहाँ तक कि घर से निकालने और जायदाद से बेदखल करने तक की धमकियां मिली।
अरे बाप रे।
पर उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, परमात्मा को साक्षी मानकर अपना रास्ता चुन लिया।
ये जो हिम्मत है शायद बचपन के एक अनुभव से भी आई थी। मैंने पढ़ा था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में।
हाँ, वो मेहतरानी वाला वाक्य है।
हाँ, समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने एक बीमार मेहतरानी की सेवा की थी और इसकी वजह से उन्हें बिरादरी से बाहर भी कर दिया गया था। फिर बाद में आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया, जेल भी गए और वहीं मालवीय जी से वो सिद्धांत सीखा, एक पैसा एक मुठिया अनाज।
हाँ, हर व्यक्ति से, और यही छोटा सा विचार आगे चलकर उनके इतने बड़े बड़े कामों का आर्थिक आधार बना।
कमाल है, कैसे छोटे अनुभव बड़ी चीजों की नींव रखते हैं।
और उनके पूरे काम का जो आधार है वो आत्मिक प्रगति के 3 स्तंभों पर टिका है, उपासना, साधना और आराधना।
उपासना, साधना, आराधना, ठीक है।
जैसे उपासना का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, इसका गहरा मतलब है ईश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना।
अच्छा।
जैसे?
जैसे
ईंधन आग में मिलकर खुद आग बन जाता है, या नदी समुद्र में मिल जाती है, ईश्वर के इशारों पर चलना, बस।
समझ गई। और साधना?
साधना है आत्मसुधार, खुद को बेहतर बनाने की लड़ाई, अपने अंदर के दुश्मन लोभ, मोह, अहंकार, इनसे लगातार लड़ते रहना। उन्होंने खुद सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाया, एक औसत भर्ती की तरह जीवन जिया और मन के जो बुरे संस्कार होते हैं उनसे लगातार जूझते रहे। उनका मानना था कि जैसे जंगली जानवर को साधा जा सकता है,
हाँ,
वैसे ही अनगढ़ बिगड़े हुए मन को भी साधना से सुधारा जा सकता है।
और तीसरा स्तंभ आराधना।
आराधना है लोकमंगल, यानी विश्व मानव की सेवा। अपनी जो भी संचित संपदा है, चाहे वो ज्ञान हो, समय हो, पैसा हो, क्षमता हो, उसे बीज की तरह भगवान के खेत यानी समाज में बो देना। उनका अनुभव था कि जो अपना सब कुछ समाज को देता है उसे जरूरत की चीजें बिना मांगे मिलती हैं। जो पास है उसे सेवा में लगाने से वो कई गुना होकर लौटता है।
और इसी सोच के साथ उन्होंने वो मथुरा में घिया मंडी में एक मकान था जिसे लोग भुताहा कहते थे, वहीं से अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, फिर गायत्री तपोभूमि बनाई और इतना साहित्य लिखा, कहते हैं उनके शरीर के वजन के बराबर साहित्य रचा उन्होंने।
हाँ, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराणों के सरल अनुवाद भी हैं और उनका अपना मौलिक चिंतन भी, बहुत विशाल काम है।
फिर बाद में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना हुई।
हाँ, जो आज भी एक बहुत बड़ा केंद्र है, और साथ ही ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान भी बना,
जहाँ अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने पर शोध होता है।
बिल्कुल, खासकर यज्ञ विज्ञान पर, कि यज्ञ का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या असर होता है, इस पर वैज्ञानिक शोध होता है।
और ये सब कैसे संभव हुआ?
ये सब समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर हुआ, जीवनदानी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए दे दिया। कई तो अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर आए थे।
अच्छा, उनकी जो हिमालय यात्राएं थीं, उनका मकसद सिर्फ एकांत साधना ही था या कुछ और भी?
नहीं, सिर्फ एकांत साधना नहीं, उद्देश्य आत्मनिरीक्षण ही था, कठिन परिस्थितियों में इच्छा शक्ति को मजबूत करना और प्रकृति से सीखना भी था। उन्होंने ये भी लिखा है कि वहाँ सूक्ष्म शरीर में रहने वाले ऋषियों से भी उन्हें मार्गदर्शन मिला और उनके अधूरे कामों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी मिली।
जीवन के आखिरी चरण में उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया, सूक्ष्मीकरण। ये क्या था?
हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा और गहरा विचार है। उन्हें ये निर्देश मिला कि दुनिया का जो भौतिक और वैचारिक वातावरण है, जो काफी विषाक्त हो चुका है,
हाँ,
हिलाकर एक साथ कई स्तरों पर काम करना,
एक से पांच बनकर।
हाँ, एक से पांच बनकर, खास तौर पर दुनिया भर की जो प्रतिभाएं हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी सोच बदलने पर फोकस था, ताकि एक बेहतर युग लाया जा सके।
कमाल है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की यह आत्मकथा, हमारी वसीयत और विरासत, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये तो जीवन साधना का एक पूरा ब्लूप्रिंट है।
हाँ, एक नक्शा है।
ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान पक्के इरादे से, सही मार्गदर्शन से और उपासना, साधना, आराधना के रास्ते पर चलकर खुद को पूरी तरह बदल सकता है
और समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम खड़े कर सकता है।
बिल्कुल।
और ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में जब चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, क्या व्यक्तिगत साधना और समाज सेवा का ये संगम उतना ही जरूरी है?
ये बहुत अहम सवाल है।
क्या हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों का चाहे छोटा सा ही अंश क्यों ना हो, उतार कर कुछ फर्क ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।